आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी। पहली बार डिजिटल माध्यम से दो चरणों में देश की 16वीं जनगणना करने की तैयारी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 32,911 किसानों को 15 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की हस्तांतरित। झारखंड मिलेट मिशन का नाम झारखंड मड़ुआ क्रांति किया घोषित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। 5 वर्षों के विभागीय कार्यों की जांच की मांग की। गिरिडीह में अवैध माइका खनन को लेकर जिला प्रशासन ने की छापेमारी। 4 गोदामों से करीब 400 टन माइका और उपकरण किए गए जब्त। और रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में 15 से 17 दिसम्बर तक आयोजित होगा 3 दिवसीय एनुअल फेस्ट। छात्र, शिक्षक और स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद से 8वीं जनगणना होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकी प्रक्रिया है। इसके तहत जातिगत गणना भी कराई जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि पहली डिजिटल जनगणना होगी। एंड्रॉयड और iOS दोनों मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि जनगणना कार्य में 30 लाख कर्मियों को लगाया जाएगा।
ये सेंसस अपने आप में एक अनूठा सेंसस होगा। दिस विल बिकम द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस। और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून बना है DPDP, उसके तहत जितने प्रोटेक्शंस और जो राइट्स सिटीजन्स को दी गई है उनका ध्यान रख के सेंसस को कंप्लीट इसका डिजिटल डिजाइन किया गया है।
जनगणना 2027 में देश की पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक घर तक जनगणना कर्मी पहुंचेंगे। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने घोषणा की कि झारखंड मिलेट मिशन अब झारखंड महुआ क्रांति के नाम से जाना जाएगा, जिससे गांवों में मड़ुआ के बढ़ते उत्पादन और किसानों की स्वीकार्यता को बढ़ावा मिलेगा। रांची स्थित पशुपालन निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने राज्य के 32,911 किसानों को DBT के माध्यम से 15,63,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की। मंत्री ने बताया कि धान अधिप्राप्ति केंद्र की तर्ज पर गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिलों में 17 लैंप्स पैक्स केंद्रों के जरिए मड़ुआ अधिप्राप्ति शुरू की जाएगी।
झारखंड मिलेट मिशन, अब झारखंड जैसे राज्य में किसानों को मिलेट का उतना जानकारी है नहीं, वो कनेक्ट भी नहीं कर पाते, इसलिए आज हम लोग सभी किसान भाइयों बहनों के साथ ये निर्णय लिए हैं कि इसका नाम को संशोधित करते हुए हम लोग झारखंड मड़ुआ क्रांति रखेंगे, ताकि किसान और योजना से कनेक्ट कर पाए। झारखंड राज्य का एक परंपरा और पहचान रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से अधिक फोकस रहेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में प्रेस वार्ता कर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी पर गंभीर आरोप लगाते हुए विभाग में पिछले 5 वर्षों के कार्यों की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि श्री बख्शी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और उनके प्रभार वाले विभागों में विज्ञापन और होर्डिंग जारी करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है।
पिछले 5 वर्षों से जो गड़बड़ी हुई है, खास करके सूचना जनसंपर्क विभाग में विज्ञापन से लेकर के ये होर्डिंग वगैरह तक, इसकी पूरी जांच होना चाहिए और सरकार इसके लिए SIT गठित करे, ताकि इस गड़बड़ी का यह पता चल सके। हमारे पास तो इतना भी जानकारी है, कई विज्ञापन ऐसे भी दिए जाते हैं, अखबार यानी कार्यक्रम हो जाता है और विज्ञापन कार्यक्रम के बाद भी दिए जाते।
केंद्रीय सरना समिति ने डिलिस्टिंग की मांग को लेकर रांची स्थित लोकभवन के पास धरना दिया, जहां धर्मांतरण के विरोध में नारेबाजी के बीच समिति की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष निशा भगत ने प्रतीकात्मक विरोध के रूप में अपना मुंडन कराया। उन्होंने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपते हुए केंद्र और राज्य सरकार से डिलिस्टिंग की कार्रवाई तेज करने की मांग की। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन को 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन गढ़वा रोड डाल्टनगंज लोहरदगा मार्ग से चलाने की स्वीकृति दे दी है, जबकि शेष 4 दिन यह ट्रेन हजारीबाग कोडरमा मार्ग से संचालित होगी। सांसद ने रांची लखनऊ के लिए नई ट्रेन की मांग तथा कोहरे के कारण बंद रांची आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को पुनः शुरू करने का अनुरोध भी किया, जिस पर रेल मंत्री ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से पलामू प्रमंडल के यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड में अवैध माइका खनन और भंडारण के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान खोरी महुआ एसडीएम अनिमेश रंजन के नेतृत्व में 4 गोदामों में छापेमारी कर लगभग 400 टन माइका और उपकरण जब्त किए गए, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। एसडीएम ने बताया कि अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और आज की छापेमारी में 1 गोदाम से 200 टन तथा 2 अन्य गोदामों से 70 से 80 टन माइका बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित कारोबारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आम लोगों से भी अवैध खनन की सूचना देने की अपील की।
2 हफ्तों से हम लोग काफी न्यूज आ रहा था कि हर जगह माइका, जिससे बाद ढिबरा, वाइट पत्थर, ये सब का काफी कारोबार चल रहा था, जिससे हम लोग पिछले हफ्ते से ही काफी सारा रेट अलग अलग जगह मार रहे हैं। जिन्हें गोदाम में हम लोग को माइका प्राप्त हुआ, उसके अलावा हम लोग 3 और गोदाम को लोगों ने सर्च किया है, वहाँ भी तकरीबन 70-80 टन के आसपास का अवैध माइका पड़ा हुआ है, जिस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर नागरिक है, अगर किसी को भी अवैध खनन का कुछ भी जानकारी है, तुरंत हम लोग के साथ शेयर करें, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे।
देवघर एयरपोर्ट के प्रभारी निदेशक जॉय बैनर्जी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों की चुनौतियों के बाद अब हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन पूरी तरह सामान्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सूचना प्रसारण, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता, बैगेज हैंडलिंग और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता सहित सभी सेवाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया है। लातेहार जिले में 15 दिसंबर से पैक्सों के माध्यम से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
लातेहार जिले में 15 दिसंबर से पैक्सों के माध्यम से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। इसके लिए जिला सहकारिता विभाग ने 27 पैक्सों की सूची जिला आपूर्ति विभाग को उपलब्ध करा दी है। इस बार जिले में 2 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने बताया कि पूरे जिले में 4823 किसान रजिस्टर्ड हैं। जो किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं, वे अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
धनबाद में 2021 के चर्चित लाला हत्याकांड में जिला अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें से 6 के पहले ही आरोप मुक्त हो चुके थे। शेष 7 को आज राहत मिली। बचाव पक्ष ने बताया कि गवाहों के मुकरने के कारण आरोप साबित नहीं हो पाए, जिसके बाद अदालत ने सभी को बरी करने का फैसला सुनाया। राजधानी रांची के संत जेवियर कॉलेज में 15 से 17 दिसंबर तक 3 दिवसीय एनुअल फेस्ट अंशतासीस का आयोजन होगा, जिसमें गीत संगीत से भरपूर कार्यक्रमों में छात्र, शिक्षक और स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। आज एक प्रेसवार्ता में आयोजन समिति के समन्वयक जॉय चौधरी ने जानकारी दी कि 5 वर्षों बाद आयोजित हो रहे इस फेस्ट में छात्रों की प्रतिभा प्रदर्शित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी। पहली बार डिजिटल माध्यम से 2 चरणों में देश की 16वीं जनगणना करने की तैयारी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 32,911 किसानों को 15,63,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की हस्तांतरित। झारखंड मिलेट मिशन का नाम झारखंड मड़ुआ क्रांति किया घोषित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। 5 वर्षों के विभागीय कार्यों की जांच की मांग की। गिरिडीह में अवैध माइका खनन को लेकर जिला प्रशासन ने की छापेमारी। चार गोदामों से करीब 400 टन माइका और उपकरण किए गए जब्त। और रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में 15 से 17 दिसंबर तक आयोजित होगा 3 दिवसीय एनुअल फेस्ट। छात्र, शिक्षक और स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।